सुबह उम्मीद।
अजीज सामीन, मोहम्मद आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम। आप सब की सेहत व सलामती और बेहतरीन दुआ के साथ प्रोग्राम सुबह उम्मीद लेकर हाजिर हैं। हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। फरजंदे रसूल हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो तरीक़ा जो इंसान को कुफ्र के नज़दीक पहुँचा देता है वो ये है कि इंसान अपने किसी दीनी भाई के साथ साथ रहे और उसकी गलतियाँ जमा करता जाए और फिर एक दिन उनकी वजह से उसे सख्त जलील व रुसवा कर दे। लीजिए समात फरमाइए सुबह उम्मीद। बेशुमार रवायतों में मोमिन को अजियत देने, उसे जलील और रुसवा करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है, बल्कि गुनाह कबीरा से ताबीर किया गया है। शेख अंसारी अलैहि रहमा फरमाते हैं, क़ुरान करीम, सुन्नत, इजमा और अक्ल की रूह से मोमिन के हज करना हराम है, क्योंकि मोमिन के हज में ऐब जोई, तानाजनी, गीबत करना, मलामत करना और राज फाश करना शामिल है और इनमें से हर एक हलाक करने वाला गुनाह है। और अगर किसी ऐसी बात की हज की जाए जो उस शख्स में मौजूद न हो तो फिर ये बोहतान शुमार होगा। गुनाहगार मोमिन और बेगुनाह मोमिन के हज में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के हज यकसां है। और जो रवायत इस मामले में फासिकों की मजम्मत के मुतालिक मिलती है उससे बेईमान लोग या वो लोग मुराद हैं जो जाहिर में गुनाह करते हैं, लेकिन गैर मोमिन के हज हराम नहीं है क्योंकि उसका कोई एहतराम नहीं है। हर साहिब बिदअत की इस बात की हज जो उसमें मौजूद है इस नियत से जायज़ है कि उसे पहचनवाया जाए ताकि कोई उसके जाल में न फंसे। खुदावंद आलम सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाता है, और जो लोग साहिबान ईमान मर्द या औरतों को बग़ैर कुछ किए धरे अजियत देते हैं उन्होंने बड़े बोहतान और खुले गुनाह का बोझ अपने सर पर उठा रखा है। फरजंदे रसूल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदावंद आलम फरमाता है कि जो कोई मेरे मोमिन बंदे को सताता है वो मेरे ख़िलाफ़ लड़ाई का ऐलान करता है, और जो शख्स मेरे मोमिन बंदे का एहतराम करता है वो मेरे गुस्से और नाराज़गी से आसूदा और बेखौफ रहता है। फरजंदे रसूल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स को किसी मोमिन का कोई गुनाह मालूम हो और वह उसे छुपाने के बजाय जाहिर कर दे और उस मोमिन की बख्शिश के लिए दुआ न करे तो वह शख्स खुदा के नज़दीक उसी के बराबर गुनाहगार होता है और उसके गुनाह की जिम्मेदारी भी उसी के सर आ जाती है और गुनाह करने वाला बख्शा जाता है, क्योंकि दुनिया में उसका बदनाम और रुसवा होना ही उसका कफ़ारा बन जाता है, फिर आखिरत में उसकी रुसवाई नहीं होती। चूँकि खुदा करीम है वह एक गुनाह पर बंदे को दो मरतबा सजा नहीं दे सकता और न दो मरतबा रुसवा कर सकता है। और अगर कोई शख्स ऐसी हिकायत बयान करे जो मोमिन को नुकसान पहुँचाने वाली होती है और उसका मकसद ये होता है कि उसे ख़राब करे और आबरू रेजी करे जिससे वह लोगों की निगाहों में जलील व ख़ार हो जाए तो खुदा वंद आलम उसे अपने आप से बेताल्लुक़ करके शैतान की तरफ ढकेल देगा और शैतान भी उसे कबूल नहीं करेगा। और शायद शैतान का उसको कबूल न करना ये हो कि शैतान की गरज इंसान की गुमराही और हलाकत और खुदा से उसका जुदा होना है, और चूंकि उसका ये मकसद हासिल हो चुका है इसलिए अब उससे कोई गरज बाकी नहीं रहती और वह उससे दूर रहना ही चाहेगा। खुदावंद आलम सूरह हुजरात की 11वीं आयत में इरशाद फरमाता है, ईमान वालों खबरदार कोई कौम दूसरी कौम का मजाक न उड़ाए, और देखो आपस में एक दूसरे की ऐबजोई भी न करना और न बुरे बुरे अलकाब से याद करना। आयत करीमा के हुक्म के मुताबिक हर मुसलमान का फरीजा है کہ جب بھی اپنے دینی بھائی کی خطاؤں اور کوتاہیوں کا مشاہدہ کرے تو خاموشی کے ساتھ اس سے بیان کرے اور نصیحت کرے، تاکہ وہ اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر دوبارہ انہیں انجام دینے سے پرہیز کرے۔ مگر اس نصیحت آمیز اقدام میں جس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے وہ لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ہے۔ اگر انسان اپنے عیوب کی جانب توجہ دے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرے تو دوسروں کے عیوب و نقائص کی جانب متوجہ ہی نہیں ہوگا اور نہ ہی اس گناہ کا مرتکب ہوگا، کیونکہ ایسی حالت میں وہ نہ صرف دوسروں کی عیب جوئی کے بارے میں رغبت پیدا نہیں کرے گا بلکہ اسے اپنے عیوب کی اصلاح کی فکر ہوگی، اور اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں بچے گا کہ وہ دوسروں کے عیوب تلاش کرے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم غلام حسین صاحب سندھ پاکستان کے شہر بدین سے لکھتے ہیں کہ میری طرف سے ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو سلام، آپ کے پروگرام قابل تعریف اور قابل ستائش ہیں، خبریں اور تبصروں کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ اپنے اس پیغام کے ذریعے میں تمام لسنرز کلب اور لسنرز کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ اور سامعین محترم غلام حسین صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک عورت کے شوہر نے دوسری شادی کر لی، ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت اپنی سوکن سے جلتی رہتی تھی۔ ایک دن جب اس کا شوہر گھر پہنچا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی، اس کا شوہر اپنی دوسری بیوی کی طرف چلا گیا۔ اس عورت نے نماز ہی کی حالت میں یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا شوہر کیا کر رہا ہے اپنی گردن گھمائی تو اس عورت کی گردن پیچھے ہی رہ گئی۔ بیچاری وہ عورت اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ کسی طبیب کو بلاؤ، پھر اسے جہاں کہیں بھی علاج معالجے کے سلسلے میں دکھایا گیا اس نے یہی کہا، اگر کسی نے بھی زور دے کر یا جھٹکے سے اس کی گردن سیدھی کرنے کی کوشش کی تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ پھر اس عورت کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا۔ ساتویں امام نے اسے توبہ کرنے کا حکم دیا، اور جب اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تو آپ نے اپنے دست مبارک آگے بڑھا کر اس کی گردن سیدھی کر دی۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔